एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जब जब तू पापों में गिरता चला जाता है, अपने आप से तू नफरत किए जाता है। जब जब तू جاتا ہے اپنے آپ سے تو نفرت کیے جاتا ہے ہی من کیوں نربل ہے ہر وقت گرتا ہے ہی من کیوں اداس ہے
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर फिर से आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, फिर से हम तेरे चरणों के समीप आते हैं। हम सबों को तू ग्रहण कर हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को ग्रहण कर सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें सुनने और तेरे वचन के द्वारा बहुत सहायत से आशीष दे। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे सामर्थ के द्वारा तेरे वचन को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज हम सीखेंगे अंतिम न्याय के विषय में। बीते दिन हम लोग सीख रहे थे यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय पवित्र स्थान में, निवास स्थान में हमारे लिए बिछवाई का काम कर रहा है। क्या ही यह सौभाग्य है हम मनुष्य जाति के लिए जो पापी हैं। पवित्र यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए बिछवाई कर रहा है। आइए हम उसके विषय में आज और आगे सीखेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे पवित्र स्थान में मसीह की सेवकाई से। निवास स्थान के पवित्र स्थान में याजक की सेवकाई को मध्यस्था, क्षमा, सुलह और बहाली की सेवकाई के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक निरंतर सेवकाई, इसने याजक के माध्यम से परमेश्वर तक निरंतर पहुंच प्रदान की। यह इस सच्चाई का प्रतीक है कि मसीह की हिमायती और मध्यस्थ के रूप में याजक के सेवकाई के माध्यम से पश्चाताप करने वाले पापी की परमेश्वर तक तत्काल और निरंतर पहुंच है। इफिसियों 2:18। जब पश्चातापी पापी बलि के साथ निवास स्थान में आता है तो वह उस निर्दोष पशु के सिर पर हाथ रखकर अपने पापों को मानता है। इस कार्य ने प्रतीकात्मक रूप से उसके पाप और उसके दंड को बलि को हस्तांतरित कर दिया। परिणाम स्वरूप उसे पापों की क्षमा प्राप्त हुई। जैसा कि यहूदी विश्वकोश कहता है, पीड़ित के सिर पर हाथ रखना एक सामान्य संस्कार है जिसके द्वारा पापों का प्रतिस्थापन और स्थानांतरण किया जाता है। हर बलिदान में प्रतिस्थापन का विचार होता है। बलि मानव पापी की जगह लेती है। पाप बलि का लहू दो में से एक तरीके से लागू किया जाता था। पहला, यदि वह पवित्र स्थान में ले जाया जाता तो उसे भीतरी पर्दे के आगे छिड़का जाता और धूप की वेदी के सिंगों पर लगाया जाता था। देखिए लेविकस 4:6, 7, 17 और 18। दूसरा, यदि वह निवास स्थान में नहीं ले जाया जाता तो उसे आंगन में होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाया जाता था। पाते हैं लेविकस 4:25 और 30 में। उस स्थिति में याजक बलि के मांस का एक भाग खाता, लेविकस 6:25, 26 और 30। किसी भी मामले में भाग लेने वाले समझ जाते थे कि उनके पापों और जवाबदेही को निवास स्थान में और उसकी याजकता को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस संस्कार दृष्टांत में निवास स्थान ने पश्चातापी के अपराध और जवाबदेही को ग्रहण किया, कम से कम कुछ समय के लिए। जब पश्चातापी ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए पाप बलि दी, परमेश्वर की स्वीकृति का आश्वासन पाते हुए वह क्षमा पाकर चला जाता था। इसलिए प्रतिरूपी अनुभव में जब एक पापी को पवित्र आत्मा द्वारा अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने के लिए पश्चाताप में खींचा जाता है तो मसीह उसके पापों और जवाबदेही को ग्रहण कर लेता है। उसे स्वतंत्र रूप से क्षमा कर दिया जाता है। मसीह विश्वासी का जमानतदार होने के साथ साथ उसका स्थानापन्न भी है। प्ररूप और प्रतिरूप में पवित्र स्थान की सेवकाई मुख्य रूप से व्यक्ति पर केंद्रित है। मसीह की याजकीय सेवकाई पापियों की क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की व्यवस्था करती है। इब्रानियों 7:25 मसीह के वास्ते परमेश्वर पश्चाताप करने वाले पापी को क्षमा करता है, अपने पुत्र का धर्मी चरित्र और आज्ञाकारिता उसको देता है, उसके पापों को क्षमा करता है और उसका नाम अपने बच्चों में से एक के रूप में जीवन की पुस्तक में दर्ज करता है। इफिसियों 4:32 1 यूहन्ना 1:9 2 कुरिन्थियों 5:21 3:24 और Luke 10:20 देखें। और जैसे विश्वासी मसीह में बना रहता है, हमारे प्रभु द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से आध्यात्मिक अनुग्रह की मध्यस्थता की जाती है ताकि वह आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो और दिव्य चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाले गुणों और चाल चलन को विकसित करे। 2 पत्रस 3:8 और Galatians 5:22-23 देखें। पवित्र स्थान की सेवकाई विश्वासी के लिए दोष मुक्ति और पवित्रीकरण प्रदान करती है। आइए अब हम अंतिम न्याय के विषय में पढ़ें और जानें प्रायश्चित के दिन की घटनाएं परमेश्वर के अंतिम न्याय के 3 चरणों को दर्शाती है। वे हैं पहला पूर्व सहसाब्दी न्याय या जांच पड़ताल न्याय, जिसे पूर्व आगमन न्याय भी कहा जाता है, दूसरा सहसाब्दी न्याय और तीसरा अंतिम न्याय जो सहसाब्दी के अंत में होता है। पहला है महापवित्र स्थान में सेवकाई। याजकीय सेवकाई का दूसरा भाग मुख्य रूप से निवास स्थान केंद्रित है, जो निवास स्थान और परमेश्वर के लोगों को शुद्ध करने के आसपास घूमता है। सेवकाई का यह रूप जो निवास स्थान के महापवित्र स्थान पर केंद्रित था और जिसे केवल महायाजक ही कर सकता था, धार्मिक वर्ष के एक दिन तक सीमित था। निवास स्थान की शुद्धता के लिए 2 बकरों की आवश्यकता थी, यहोवा का बकरा और अजाजेल का बकरा। यहोवा के बकरे की बलि देकर महायाजक ने पवित्र स्थान, वास्तव में महापवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू और वेदी जो यहोवा के सामने है के लिए प्रायश्चित किया। लेवियस्ता 16:20 और इसे तुलना करें लेवियस्ता 16:16-18 से यहोवा के बकरे के लहू को जो मसीह के लहू का प्रतिनिधित्व करता था महापवित्र स्थान में ले जाकर महायाजक सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रायश्चित वाले ढकने पर 10 आज्ञाओं वाले संदूक के ढक्कन पर लगाता था। परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था की मांग को संतुष्ट करने के लिए उसका कार्य उस अथाह मूल्य का प्रतीक था जिसे मसीह को हमारे पापों के लिए चुकाना पड़ा था। यह प्रकट करते हुए कि परमेश्वर अपने लोगों को स्वयं से मिलाने के लिए कितना उत्सुक है, देखिए और तुलना करें 2 कुरिन्थियों 5:19 से फिर वह उस लहू को धूप की वेदी पर लगाता था जिस पर वर्ष के हर दिन अंगीकार किए गए पापों के लहू को छिड़का जाता था। इस प्रकार महायाजक निवास स्थान और लोगों के लिए प्रायश्चित करता था और दोनों को शुद्ध करता था, लेवियस्ता 16:16-20 और 30-33। इसके बाद मसीह के मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करते हुए महायाजक उन पापों को अपने ऊपर ले लेता था जिन्होंने निवास स्थान को दूषित कर दिया था और उन्हें जीवित बकरे अजाजेल के ऊपर स्थानांतरित कर देता था जिसे फिर परमेश्वर के लोगों की छावनी से दूर ले जाया जाता था। यह कार्य उन लोगों के पापों को दूर कर देता था जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से क्षमा की दैनिक सेवकाई के बलिदानों के लहू या मांस के द्वारा पश्चाताप करने वाले विश्वासियों से निवास स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार निवास स्थान को शुद्ध किया जाता था और एक और वर्ष की सेवकाई के लिए तैयार किया जाता था, लेवियस्ता 16:16-20 और 30-33। और इस प्रकार परमेश्वर और उसके लोगों के बीच सब कुछ ठीक कर दिया जाता था। तो प्रायश्चित का दिन उस न्याय प्रक्रिया को दर्शाता है जो पाप को मिटाने से संबंधित है। इस दिन किया गया प्रायश्चित परमेश्वर के अधीन एक सामंजस्यपूर्ण शासन में ब्राह्मण के पूर्ण मेल मिलाप को पूरा करने के लिए सभी अनंत काल के लिए पाप की उपस्थिति को दूर करने के लिए मसीह के गुणों के अंतिम प्रयोग का पूर्वाभास देता है। दूसरा है अजाजेल का बकरा। हिब्रू अजाजेल का अनुवाद जंगल में छोड़ा गया बकरा वल्गेट सेपर एमिसारियस बकरा जिसे दूर भेजा गया लेवस्ता 16:8 से आता है। लेवस्ता 16 की सावधानी पूर्वक जांच से पता चलता है कि अजाजेल शैतान का प्रतिनिधित्व करता है न कि मसीह का, जैसा कि कुछ लोगों ने सोचा है। इस व्याख्या का समर्थन करने वाले तर्क हैं। पहला, अजाजेल का बकरा बलिदान के रूप में नहीं मारा गया था और इस प्रकार क्षमा देने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती, इब्रानियों 9:22। दूसरा बात है, अजाजेल के बकरे को संस्कार में शामिल होने से पहले निवास स्थान को पूरी तरह से यहोवा के बकरे के लहू से साफ कर दिया गया था, लेवस्ता 16:20। और तीसरा बात है, पद्यांश अजाजेल के बकरे को एक व्यक्तिगत प्राणी के रूप में मानता है जो परमेश्वर के विपरीत है और उसका विरोध करता है, लेवस्ता 16:8 का शाब्दिक अर्थ है एक यहोवा के लिए और दूसरा अजाजेल के लिए। इसलिए निवास स्थान दृष्टांत की पृष्ठभूमि में यहोवा के बकरे को मसीह के प्रतीक के रूप में और अजाजेल के बकरे को शैतान के प्रतीक के रूप में देखना अधिक तर्कयुक्त है। चलिए हम तीसरा बात पर ध्यान दें, वह है न्याय के विभिन्न चरण। प्रायश्चित के दिन अजाजेल के बकरे का संस्कार कलवरी से परे पाप की समस्या के अंतिम अंत की ओर इशारा करता है। पाप और शैतान का निकाल दिया जाना, पाप के लिए पूर्ण जवाबदेही शैतान, पाप को पैदा करने वाले और बहकाने वाले के ऊपर वापस आ जाएगी। शैतान और उसके अनुयायी और पाप के सभी प्रभाव विनाश के द्वारा ब्राह्मण से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए न्याय के द्वारा प्रायश्चित ब्राह्मण को पूरी तरह से मेल मिलाप और सद्भावपूर्ण बनाएगा, इफिसियों 1:10। यही वह उद्देश्य है जिसे स्वर्गीय निवास स्थान में मसीह की याजकीय सेवकाई का दूसरा और अंतिम चरण पूरा करेगा। यह न्याय ब्राह्मण के सामने परमेश्वर के अंतिम शुद्धिकरण को दिखाएगा। प्रायश्चित के दिन ने अंतिम न्याय के तीन चरणों को चित्रित किया। पहला है निवास स्थान से पापों को हटाना पहले या आगमन पूर्व जांच पड़ताल न्याय के चरण से संबंधित है। यह जीवन की पुस्तक में दर्ज नामों पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे प्रायश्चित के दिन ने निवास स्थान से पश्चाताप करने वाले के पापों को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया, झूठे विश्वासियों को बाहर निकाला जाएगा, सच्चे विश्वासियों का विश्वास और मसीह के साथ उनकी एकता की वफादार ब्राह्मण के सामने फिर से पुष्टि की जाएगी और उनके पापों के अभिलेख मिटा दिए जाएंगे। दूसरा है अजाजेल के बकरे का जंगल में छोड़ा जाना इस उजाड़ पृथ्वी पर शैतान के सहस्त्र शाब्दी कारावास का प्रतीक है जो दूसरे आगमन पर शुरू होता है और अंतिम न्याय के दूसरे चरण के साथ मेल खाता है जो स्वर्ग में होता है, प्रकाशित वाक्य 20:4 और 1 कुरिन्थियों 6:1-3। इस सहस्त्र शाब्दी न्याय में दुष्टों के न्याय की समीक्षा शामिल है और छुटकारा पाने वालों को पाप के प्रति परमेश्वर के व्यवहार और उन पापियों को जो बचाए नहीं गए थे के बारे में अंतर्दृष्टि देकर लाभान्वित करेगा। यह उन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा जो छुटकारा पाए हुए लोगों के पास परमेश्वर की दया और न्याय के बारे में हो सकते हैं। तीसरा बात है शुद्ध छावनी तीसरे या अंतिम न्याय के चरण के परिणामों का प्रतीक है। जब आग दुष्टों का नाश करती है और पृथ्वी को शुद्ध करती है। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 और मत्ती 25 का 31 से 46। भविष्यवाणी में स्वर्गीय निवास स्थान के बारे में कहा गया था। उपरोक्त चर्चा में हमने निवास स्थान पर प्ररूप प्रतिरूप के नजरिए से ध्यान केंद्रित किया था। अब हम इसे भविष्यवाणी में देखेंगे। स्वर्गीय निवास स्थान का अभिषेक। दानियल 9 के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी ने स्वर्गीय निवास स्थान में मसीह की याजकीय सेवकाई के उद्घाटन की ओर संकेत किया। 490 वर्षों के दौरान होने वाली अंतिम घटनाओं में से एक महापवित्र का अभिषेक था। दानियल 9 का 24 देखें। इब्रानी कोदेश कोदेशीम, जिसका अनुवाद महापवित्र के रूप में किया गया है, का शाब्दिक अर्थ है पवित्र से भी पवित्र। वाक्यांश का अनुवाद इसलिए पवित्र से भी पवित्र का अभिषेक करना या महापवित्र स्थान का अभिषेक करना बेहतर होगा। जैसा कि संसारिक निवास स्थान के उद्घाटन के समय इसे अपनी सेवाओं के लिए पवित्र तेल से अभिषेक किया गया था, उसी तरह उसके उद्घाटन में स्वर्गीय निवास स्थान का अभिषेक किया जाना था, ताकि उसे मसीह की मध्यस्थता की सेवकाई के लिए पवित्र किया जा सके। अपनी मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्गारोहण के साथ दानियल 9:27 मसीह ने हमारे महायाजक और मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवकाई शुरू की। स्वर्गीय निवास स्थान का शुद्धिकरण होता है। स्वर्गीय निवास स्थान के शुद्ध होने की बात करते हुए इब्रानियों की पुस्तक कहती है, सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप पशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं संसारिक निवास स्थान से उत्तम बलिदानों मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। इब्रानियों 9:22-23। विभिन्न टिप्पणी कारों ने इस बाइबल शिक्षा पर ध्यान दिया है। हेनरी अल्फर्ड ने टिप्पणी की कि स्वर्ग को स्वयं मसीह के प्रायश्चित लहू द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता थी और प्राप्त हुई। बीएफ वेस्टकॉट ने टिप्पणी की, यह कहा जा सकता है कि स्वर्गीय चीजें भी, जहां तक वे मनुष्य के भावी जीवन की स्थितियों को मूर्त रूप देती हैं, पतन के अनुबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सफाई की आवश्यकता होती है। यह मसीह का लहू था, उसने कहा, जो संसारिक निवास स्थान के स्वर्गीय मूल रूप को शुद्ध करने के लिए उपलब्ध था। जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के पाप विश्वास के द्वारा पाप बलि पर रखे जाते थे और फिर प्रतीकात्मक रूप से संसारिक निवास स्थान में स्थानांतरित किए जाते थे, उसी प्रकार नई वाचा के तहत पश्चाताप करने वाले के पापों को विश्वास के द्वारा मसीह पर रखा जाता है। और जैसे कि प्रायश्चित के प्ररूपी दिन में संसारिक निवास स्थान को शुद्ध करने से वहां जमा पापों को हटा दिया जाता था, उसी प्रकार स्वर्गीय निवास स्थान को स्वर्गीय पुस्तकों में से पापों के अभिलेख को अंतिम रूप से हटाने के द्वारा शुद्ध किया जाता है। लेकिन इससे पहले कि अभिलेखों को अंतिम रूप से साफ किया जाए, यह निर्धारित करने के लिए उनकी जांच की जाएगी कि पश्चाताप और मसीह में विश्वास के माध्यम से कौन उसके अनंत राज्य में प्रवेश करने का हकदार है। इसलिए स्वर्गीय निवास स्थान के शुद्ध किए जाने में जांच या न्याय का कार्य शामिल है, जो पूरी तरह से न्याय के दिन के रूप में प्रायश्चित के दिन की प्रकृति को दर्शाता है। यह न्याय जो इस फैसले की पुष्टि करता है कि कौन बचाया जाएगा और कौन खो जाएगा, दूसरे आगमन से पहले होना चाहिए, क्योंकि उस समय मसीह हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए अपने प्रतिफल के साथ लौटता है। प्रकाशित वाक्य 22:12। फिर शैतान के आरोपों का उत्तर भी दिया जाएगा। तुलना करें प्रकाशित वाक्य 12:10 से। वे सभी जिन्होंने वास्तव में पश्चाताप किया है और विश्वास के द्वारा मसीह के प्रायश्चित बलिदान के लहू का दावा किया है, उन्हें क्षमा प्राप्त हुई है। जब उनके नाम इस न्याय में सामने आते हैं और वे मसीह की धार्मिकता के वस्त्र पहने पाए जाते हैं, तो उनके पाप मिटा दिए जाते हैं और वे अनंत जीवन के योग्य माने जाते हैं। लूका 20:35, जो जय पाए, यीशु ने कहा, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:5। वैश्वक्ता दानियल इस जांच पड़ताल न्याय की प्रकृति को प्रकट करता है, जबकि छोटे सिंह के प्रतीक धर्म त्यागी शक्ति परमेश्वर और पृथ्वी पर उसके लोगों के खिलाफ अपने निंदात्मक और सताने वाले कार्य को जारी रखते हुए हैं। दानियल 7:8, 20, 21 और 25। सिंहासन रखे गए हैं और परमेश्वर अंतिम न्याय की अध्यक्षता करता है। यह न्याय स्वर्गीय निवास स्थान के सिंहासन कक्ष में होता है और इसमें स्वर्गीय गवाहों की भीड़ शामिल होती है। जब न्यायी बैठ जाते हैं और पुस्तकें खोली जाती हैं, इस जांच पड़ताल प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत देती हैं। इस न्याय के बाद ही धर्म त्यागी शक्ति नष्ट की जाती है। दानियल 7:9-10 और दानियल 7:11। तो यीशु मसीह, जो हमारा मसीह है, हमारा महायाजक है, स्वर्ग में यह काम कर रहे हैं, जांच पड़ताल का काम कर रहे हैं। कौन उसको माना है और उसको उसे क्षमा मांगा है और उसका धार्मिकता पाया, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे। आइए हम उनको स्वीकार करें और अपने पापों का क्षमा प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे पापों की क्षमा के लिए तूने महान योजना बनाया पिता। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और स्वर्ग में हमारे लिए बिछवाई का काम कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थता का काम कर रहा है पिता। हमें प्रभु यीशु मसीह के काम को स्वीकार करने के लिए मदद कर कि हम पश्चाताप और तुझे ग्रहण करने के द्वारा हम धार्मिकता पा सके और बचाया जा सके पिता। मैं श्रोताओं को बहुत आशीष दूं, हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर,
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।